क्या होगा अगर मैं कहूं कि मानव इतिहास की सबसे मशहूर सजा की कहानी, मेरा मतलब है अदन के बगीचे या ईडन गार्डन से निकाले जाने की कहानी, उसमें असल में इंसानों को कभी श्राप दिया ही नहीं गया था।
ये सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान हो जाए।
बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ईडन से निकाले जाने के बाद इंसानों पर एक भयानक श्राप लग गया था, लेकिन मूलपाठ कुछ और ही कहानी बयां करता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं।
हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा में हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज द्वारा जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 2 और 3 पर दिए गए व्याख्यान का विश्लेषण कर रहे हैं।
सही कहा, और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ किसी प्राचीन कथा का सारांश देना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ईडन के बाहर की ये घटनाएं, मानव संघर्ष, हमारे रिश्तों की जटिलता और एक कभी न खत्म होने वाली आशा का ब्लूप्रिंट कैसे हैं।
और देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि इन अध्यायों को अक्सर लोग सिर्फ पतन और सजा के एक कानूनी दस्तावेज की तरह देखते हैं।
हाँ, जैसे कोई नियम टूटा और जज ने तुरंत सजा सुना दी।
एकदम सही, लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज अपने विश्लेषण में एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जो इस पूरी कहानी को देखने का हमारा चश्मा ही बदल देता है।
अच्छा, तो उनका नजरिया क्या है?
वे स्पष्ट करती हैं, मेरा मतलब है वे स्पष्ट करते हैं कि जेनेसिस में, विशेषतः 3:14-19 में, ईश्वर जो न्याय के वचन बोलते हैं वे वास्तव में आदेशात्मक या प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है।
आदेशात्मक नहीं है, इसका मतलब है कि वे कोई नया नियम या कानून नहीं थोप रहे थे।
बिल्कुल नहीं।
तो अगर वे आदेश नहीं है तो फिर वो क्या है?
वे वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि ईश्वर यह नहीं कह रहे हैं कि अब से ऐसा ही होना चाहिए।
तो वो क्या बता रहे हैं?
वे यह बता रहे हैं कि पाप और विद्रोह के आ जाने के कारण भविष्य में स्वाभाविक रूप से क्या होगा। वे एक आने वाले संघर्ष का वर्णन कर रहे हैं जो सांप के वंश और स्त्री के वंश के बीच होगा।
ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर देख रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई जहरीली चीज खा लेता है और फिर डॉक्टर के पास जाता है।
हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है,
है ना? तो डॉक्टर उससे कहता है कि देखिए, इस जहर की वजह से अब शरीर में तेज दर्द होगा और बुखार आएगा। यहाँ डॉक्टर उस मरीज को बुखार लाने का आदेश नहीं दे रहा है।
बिल्कुल सही, वो तो बस बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है।
हाँ, वो बस उस बीमारी के लक्षणों का वर्णन कर रहा है जिसे मरीज ने खुद अपने अंदर लिया है। वो कोई जीवन शैली का नुस्खा ही दे रहा है।
उस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिर्फ लक्षण ही नहीं बता रहा, बल्कि वो ये भी बता रहा है कि वो जहर शरीर के हर हिस्से को कैसे प्रभावित करेगा।
मतलब रिश्तों पर और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा।
हाँ, और इस वर्णनात्मक पहलू को समझना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम स्त्री के प्रति सुनाए गए न्याय के वचन को देखते हैं।
अच्छा, जहाँ जेनेसिस 3:16 में कहा गया है कि स्त्री की इच्छा अपने पति की ओर होगी और वो उस पर शासन करेगा।
बिल्कुल वही पंक्ति। ऐतिहासिक रूप से इस एक पंक्ति का इस्तेमाल कई बार सत्ता के दुरुपयोग को सही ठहराने के लिए किया गया है।
हाँ, मतलब इतिहास देखें तो अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल पितृसत्ता या पैट्रियार्की को सही ठहराने के लिए हुआ है।
सत्ता पर ऐसा ही लगता है, लेकिन स्रोत का गहराई से विश्लेषण करते हुए डॉक्टर मैथ्यूज स्पष्ट करते हैं कि यह पुरुषों को महिलाओं पर शासन करने का कोई दैवीय लाइसेंस या आदेश नहीं है।
तो क्या यह समाज में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का कोई नियम भी नहीं है?
नहीं, डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा रेखा खींचते हैं। वे बताते हैं कि यह न्याय का वचन नागरिक समाज जैसे कि सरकार, वाणिज्य या सार्वजनिक कार्यक्षेत्रों पर बिल्कुल लागू नहीं होता है।
तो ये लागू कहाँ होता है?
ये विशेष रूप से परिवार और चर्च के भीतर की व्यवस्था से संबंधित है, और वहाँ भी हमें पूरे धर्मशास्त्र का संतुलन देखना होता है।
मतलब हमें बाइबल के बाकी हिस्सों को भी साथ रखकर देखना होगा।
हाँ, अगर हम नए नियम में इफिसियों के अध्याय 5 को देखें तो प्रेरित पौलुस पुरुषों को महिलाओं पर तानाशाही या शोषण करने का आदेश नहीं देते,
बल्कि वे तो कहते हैं कि पति अपनी पत्नियों से निस्वार्थ प्रेम करें, है ना?
बिल्कुल, उसी तरह जैसे मसीह ने चर्च से किया, और पत्नियां अपने पतियों का सम्मान करें। ईश्वर की व्यवस्था संतुलन और आपसी सम्मान के बारे में है, शोषण के बारे में नहीं।
ये स्पष्टीकरण काफी मददगार है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है।
बताइए, क्या उलझन है?
अगर ये शासन करने का कोई दैवीय फरमान नहीं है तो फिर मूल पाठ में इच्छा और शासन जैसे भारी शब्दों का असल मतलब क्या है?
ये एक बहुत ही जायज सवाल है,
क्योंकि ये शब्द सुनने में काफी नकारात्मक लगते हैं। उसकी इच्छा तेरी ओर होगी और तू उस पर शासन करेगा, ये तो सीधे तौर पर एक सत्ता के संघर्ष या पावर स्ट्रगल जैसा लगता है।
यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इन शब्दों का असली और गहरा अर्थ हमें जेनेसिस के ठीक अगले अध्याय में मिलता है।
अगले अध्याय में मतलब जेनेसिस 4 में?
हाँ, अगर हम भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो हिब्रू भाषा में इच्छा और शासन का ठीक यही युग्म जेनेसिस 4:7 में भी इस्तेमाल हुआ है।
जेनेसिस 4 मतलब केन और हाबिल की कहानी में?
बिल्कुल वही, जब केन का बलिदान अस्वीकार कर दिया जाता है और वो ईर्ष्या से भर जाता है तो ईश्वर उसे एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं।
क्या कहते हैं?
वे कहते हैं कि पाप तुम्हारे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है, उसकी इच्छा तुम पर नियंत्रण करने की है, लेकिन तुम्हें उस पर शासन करना होगा।
अरे वाह, तो यहाँ इच्छा का अर्थ कोई प्रेम या आकर्षण नहीं है?
एकदम सही पकड़े आप, ये किसी को निगल जाने, हावी होने या पूरी तरह से नियंत्रित करने की हिंसक लालसा है।
ओहो, तो ये किसी भूखे जंगली जानवर या एक ऐसे गार्ड डॉग की तरह है जिसे दरवाजे पर रखा गया था लेकिन वो अब अचानक हिंसक हो गया है।
बहुत ही सटीक तुलना है ये।
मतलब वो जानवर अब रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो बस इंतजार कर रहा है कि कब मौका मिले और वो हावी हो जाए।
और अब इस अर्थ को वापस जेनेसिस 3:16 के वैवाहिक संदर्भ में ले जाइए।
अच्छा, तो पति पत्नी के बीच भी ठीक वही शब्द इस्तेमाल हुए हैं?
हाँ, डॉक्टर मैथ्यूज यही समझाते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई पारंपरिक भूमिकाओं का शांतिपूर्ण वर्णन नहीं है, ये पाप का सीधा परिणाम है।
तो पति और पत्नी के बीच जो संघर्ष हम देखते हैं वो एक दूसरे पर हावी होने और नियंत्रित करने की उसी पापी लालसा का नतीजा है जो केन के दरवाजे पर घात लगाए बैठी थी।
बिल्कुल, और इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आधुनिक रिश्तों में जो हम सत्ता की लड़ाई देखते हैं वो कोई मूल डिजाइन नहीं है।
मतलब ईडन के बगीचे में शुरुआत में तो दोनों को मिलकर सृष्टि को संवारने का काम मिला था, वहाँ कोई नियंत्रण की होड़ नहीं थी।
हाँ, वहाँ पूरी तरह से निस्वार्थ सहयोग था, लेकिन पाप ने उस मूल डिजाइन को विकृत कर दिया और उसे एक विनाशकारी होड़ में बदल दिया।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इंसान एक दूसरे पर हावी होने के इस दुष्चक्र में फंस गए हैं तो क्या उनके लिए कोई आशा बची है?
यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
क्या वे हमेशा के लिए इस नियंत्रण की लड़ाई में श्रापित हैं? और यहीं पर स्रोत सामग्री का वो चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था।
हाँ, वो श्राप न होने वाली बात।
बिल्कुल, अगर हम मूल पाठ को ध्यान से पढ़ें तो सांप को श्राप दिया गया, जमीन को खेती के लिए श्राप दिया गया जिससे काम करना मुश्किल हो गया, लेकिन पाठ में कहीं भी ईश्वर ने पुरुष या स्त्री को सीधे तौर पर श्राप नहीं दिया।
और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस पूरे वृतांत का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है।
तो इंसान को श्राप न देने का असली मतलब क्या निकलता है?
पुरुष और स्त्री को सीधे तौर पर श्राप न देने का निहितार्थ ये है कि वे अभी भी मोक्ष के योग्य हैं, वे रिडीमेबल हैं।
मतलब ईश्वर की योजना विफल नहीं हुई है?
बिल्कुल नहीं। ईश्वर का जो मूल आशीर्वाद मानव परिवार के लिए था कि वो फलें फूलें, वो आशीर्वाद अब भी मौजूद है, बस अब उसे एक टूटी हुई दुनिया में काम करना होगा।
तो ये बात साफ है कि सजा और परिणाम तो थे लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया था, पर स्रोत में इस बात के क्या प्रमाण हैं कि इंसानों के लिए अभी भी कोई आशा बची थी?
प्रमाण हमें पाठ की छोटी छोटी घटनाओं में मिलते हैं। उदाहरण के लिए, न्याय के इन वचनों को सुनने के ठीक बाद आदम क्या करता है?
वो अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखता है ना?
हाँ, हव्वा, जिसका अर्थ है सभी जीवितों की माता। जरा सोचिए, उस माहौल में जहाँ चारों तरफ मृत्यु और पतन की बात हो रही थी,
वहाँ अपनी पत्नी को जीवन से जुड़ा नाम देना, ये तो आदम के पश्चाताप और ईश्वर के वादों में उसके गहरे विश्वास को दर्शाता है।
बिल्कुल, ये निराशा के बीच आशा का एक बहुत बड़ा कदम था।
ये तो हुई इंसान की तरफ से आशा की बात, लेकिन ईश्वर की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे याद आ रहा है कि वे उन्हें जानवरों की खाल के कपड़े पहनाते हैं।
हाँ, जबकि शुरुआत में इंसानों ने खुद को अंजीर के पत्तों से ढकने की कोशिश की थी,
जो एक तरह से उनका अपना अधूरा प्रयास था।
सही कहा, पत्तों से खुद को ढकना ये दर्शाता है कि इंसान अपने बलबूते पर अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश कर रहा था जो कि अस्थाई था।
और ईश्वर का उन्हें जानवरों की खाल के कपड़े पहनाना, ये तो सक्रिय अनुग्रह या ग्रेस का बहुत बड़ा उदाहरण है।
बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा धर्मशास्त्रीय मैकेनिज्म भी काम कर रहा है।
वो मैकेनिज्म क्या है? मतलब खाल का ही इस्तेमाल क्यों किया गया?
प्राचीन काल के संदर्भ में इसे समझिए। जानवरों की खाल प्राप्त करने का सीधा मतलब है कि वहाँ पशु का जीवन लिया गया, खून बहाया गया।
ओह, मतलब बिना मृत्यु के वो खाल नहीं मिल सकती थी।
डॉक्टर मैथ्यूज के व्याख्यान के अनुसार उस समय के पाठकों के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था। ये पहली बार था जब पाप को ढांपने के लिए रक्त बहाया गया था।
तो ये पापों के प्रायश्चित और एक प्रतिस्थापन बलिदान की ओर पहला कदम था। ने उस मृत्यु को इंसान पर तुरंत लागू करने के बजाय एक निर्दोष जानवर को उस कीमत के रूप में स्वीकार किया,
ताकि इंसान की शर्म को ढका जा सके। ये आने वाले समय में होने वाले अंतिम बलिदान की एक झलक थी।
ये तो ऐसा है जैसे आपसे कोई बेशकीमती फूलदान टूट जाए और घर का मालिक आपको बाहर निकालने के बजाय कांच के टुकड़ों को साफ करने में आपकी मदद करे।
हाँ, और आपको जूते पहना दे ताकि आपके पैर न कटे। बिल्कुल सही उपमा है।
मतलब सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ईश्वर खुद उनके बचाव का रास्ता तैयार कर रहे थे, लेकिन अगर वे श्रापित नहीं हुए तो फिर अदन के बगीचे से निकाले जाने पर उन्होंने असल में खोया क्या?
ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है।
हाँ, क्या उन्होंने अपने अंदर मौजूद ईश्वर की छवि यानी इमेज ऑफ गॉड खो दी?
ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन स्रोत इसके बिल्कुल विपरीत बात करता है। नहीं, ईश्वर की छवि नष्ट नहीं हुई थी।
तो ईश्वर की छवि में असल में क्या क्या आता है?
जब हम धर्मशास्त्रों में ईश्वर की छवि की बात करते हैं तो इसमें इंसान का बुनियादी मूल्य, उसका व्यक्तित्व और सभी जातियों, लिंगों या वर्गों की जन्मजात समानता शामिल है,
जो हमें जानवरों से अलग करता है। तो हमारा वो मानवीय डीएनए या हमारा आंतरिक मूल्य अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित था?
पूरी तरह से। इसे प्रमाणित करने के लिए हम जेनेसिस 9:6 को देख सकते हैं, जो कि जल प्रलय के बहुत बाद की घटना है।
वहाँ क्या कहा गया है?
वहाँ ईश्वर कहते हैं कि जो कोई इंसान का खून बहाएगा उसका खून भी बहाया जाएगा, क्योंकि इंसान ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है।
और नए नियम में भी इसका जिक्र है ना?
हाँ, याकूब 3:9 इसका और भी स्पष्ट प्रमाण देता है। वहाँ लिखा है कि हम उसी जीभ से ईश्वर की स्तुति करते हैं और उसी से इंसानों को कोसते हैं जो ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं।
इसका मतलब है कि आज भी हर एक इंसान ईश्वर की छवि धारण किए हुए। किसी भी इंसान का अपमान करना सीधे तौर पर उस ईश्वर का अपमान करना है।
बिल्कुल, ईश्वर की छवि बरकरार है।
तो फिर खोया क्या? अगर हमारा मूल्य नहीं खोया, हम श्रापित नहीं हुए, तो फिर बगीचे से बाहर जाने का नुकसान क्या था?
जो खो गया वो इंसान का वो उच्च पद, सम्मान, महिमा और अधिकार था।
अच्छा, वो शाही पद।
हाँ, भजन संहिता 8 इस बात का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। वहाँ लिखा है कि ईश्वर ने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया था
और उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया था।
मतलब इंसान को इस पूरी सृष्टि पर एक राजा की तरह देखभाल करने का अधिकार दिया गया था।
एकदम सही।
मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में किसी शीर्ष अधिकारी या मैनेजर से कोई बहुत भारी गलती हो जाती है। सीईओ उसे तुरंत नौकरी से निकालता नहीं है, ना ही वो उसकी गरिमा या इंसान होने का सम्मान छीनता है।
तो वो क्या करता है?
वो उससे उसका मैनेजर का पद और उसकी जिम्मेदारियां वापस ले लेता है। उसे अब एक आम कर्मचारी की तरह संघर्ष करना होगा।
बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपना आंतरिक मूल्य नहीं खोया, बल्कि हमने अपनी शाही उपाधि और अपना ताज खो दिया?
ये समझने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हमने सृष्टि पर वो प्रेमपूर्ण नियंत्रण खो दिया। हमारा जो पर्यावरण हमारे अधीन होना चाहिए था वो अब हमारे खिलाफ हो गया।
जैसे कि जमीन से कांटे उगना।
हाँ, और जैसा हमने पहले देखा, हमारे अपने रिश्ते उसी सत्ता के संघर्ष में बदल गए। हमने अपना महल और अपना सिंहासन खो दिया, भले ही हम राजघराने के सदस्य बने रहें।
लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है ना? श्रोक हमें बताता है कि इस खोए हुए ताज को वापस पाने का भी एक रास्ता था।
जी हाँ, डॉक्टर मैथ्यूज इब्रानियों के अध्याय 2 का हवाला देते हैं, जहां इसी भजन संहिता 8 की चर्चा की गई है।
इब्रानियों का लेखक क्या कहता है?
वो कहता है कि आज हम दुनिया में सब कुछ इंसान के अधीन नहीं देखते। बीमारियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, मृत्यु है, लेकिन हम यीशु को देखते हैं
जो स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे आए, एक इंसान बने।
हाँ, और मृत्यु का दुख सहा ताकि वे पूरी मानवता के लिए उस खोए हुए सम्मान और महिमा को वापस ला सकें।
यीशु ने दूसरे आदम के रूप में वो किया जो पहला आदम करने में विफल रहा।
बिल्कुल, प्रलोभन के बीच भी पूरी तरह से ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना।
ये एक बहुत ही शानदार बचाव अभियान लगता है, ताज खो गया और उसे वापस लाने के लिए खुद राजा को नीचे आना पड़ा।
सही कहा।
लेकिन जब हम इस पूरी महान योजना को देखते हैं तो एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर ताज वापस लाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तो ईश्वर ने ये सब किया ही क्यों?
ये धर्मशास्त्र का सबसे गहरा सवाल है,
है ना?
सृष्टि की रचना करने की, इंसानों को बनाने की और फिर उन्हें बचाने के लिए इतनी लंबी योजना चलाने की क्या जरूरत थी?
और इसका जवाब हमें ईश्वर की प्रकृति में और जेनेसिस के बिल्कुल शुरुआती शब्दों में मिलता है।
अगर हम जेनेसिस 1:26 पर ध्यान दें तो सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं।
यहाँ ये हम शब्द मतलब बहुवचन बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या इसका मतलब ये है कि बाइबल ये कह रही है कि वहाँ एक से ज्यादा ईश्वर थे?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म तो पूरी तरह से एकेश्वरवाद पर आधारित है।
वे पूरी तरह से एकेश्वरवादी हैं, लेकिन ये हम शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उस एक ही ईश्वर के भीतर एक बहुलता या प्लूरैलिटी है।
अच्छा, इसे और कैसे प्रमाणित किया गया है स्रोत में?
स्रोत हमें जेनेसिस 18 में इब्राहिम की कहानी का भी उदाहरण देता है, जहां 3 आगंतुक उनके तंबू पर आते हैं, जिनमें से एक को स्पष्ट रूप से प्रभु कहा गया है और 2 स्वर्गदूत हैं।
और नए नियम में भी कुछ ऐसा है ना?
हाँ, योहन्ना 1 और कुलूसियों 1 स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि के निर्माण में वचन यानी यीशु की सीधी भूमिका थी, सब कुछ उनके द्वारा रचा गया था।
तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 ईश्वर की अवधारणा है। लेकिन इससे हमारे उस सवाल का क्या लेना देना है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची?
अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो प्राचीन काल के बहुदेववादी धर्मों को देखें, वहां देवता अक्सर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानों को बनाते थे,
जैसे कि भोजन, सेवा या मनोरंजन के लिए।
हाँ, वहीं दूसरी ओर अगर हम किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना करें जो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो सृष्टि से पहले अनंत काल में उसके पास प्रेम करने के लिए कोई नहीं होता।
क्योंकि प्यार करने के लिए कोई तो चाहिए, अगर कोई बिल्कुल अकेला है तो वो किससे प्यार करेगा?
बिल्कुल, प्रेम का अनुभव करने के लिए उसे किसी दूसरे की रचना करनी ही पड़ेगी, यानी सृष्टि एक मजबूरी बन जाती है।
लेकिन ईसाई दर्शन में ये अलग कैसे है?
त्रिएक ईश्वर की अवधारणा इस पूरी सोच को पलट देती है। इस दर्शन के अनुसार त्रिएक ईश्वर के भीतर हमेशा से ही एक पूर्ण और अनंत प्रेम मौजूद था।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच एक संपूर्ण सामंजस्य था।
हाँ, ईश्वर को प्रेम करने के लिए ब्रह्मांड या इंसानों को बनाने की कोई मजबूरी नहीं थी, वे अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट थे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव जाति का निर्माण कोई अकेलेपन की उपज नहीं थी, बल्कि ये पहले से मौजूद एक परिपूर्ण और छलकते हुए प्रेम का परिणाम या स्पिलओवर था।
एकदम सही शब्द है, स्पिलओवर। ईश्वर का प्रेम इतना गहरा और बाहर की ओर प्रवाहित होने वाला था कि उन्होंने उस प्रेम को साझा करने के लिए मानवता की रचना की।
वे चाहते थे कि कोई और भी इस आनंद का हिस्सा बने।
और यही कारण है कि जब इंसान ने अपना शाही ताज खो दिया तो उसी विशुद्ध प्रेम ने ईश्वर को एक बचाव योजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हम किसी जरूरत के तहत नहीं, प्रेम के कारण बनाए गए थे।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि अदन के बगीचे के बाहर की दुनिया सिर्फ सजा और शराब की दुनिया नहीं है।
बिल्कुल, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, चाहे वो रिश्तों में हावी होने की लालसा हो या पर्यावरण से जद्दोजहद, वे कोई स्थायी श्राप नहीं है,
बल्कि वे एक टूटी हुई व्यवस्था के लक्षण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर की छवि और इंसान का गरिमापूर्ण मूल्य आज भी हर इंसान में बरकरार है।
वो कभी नष्ट नहीं हुआ। जो खोया था वो सिर्फ हमारा शाही सम्मान था, जिसे वापस दिलाने की योजना पहले से ही काम कर रही है।
आज की दुनिया में जहां हर रोज नए संघर्ष देखने को मिलते हैं, यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व महज एक दुर्घटना नहीं है।
हम एक गहरी संरचना का हिस्सा हैं, जिसे निस्वार्थ प्रेम के आधार पर बनाया गया था। जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी ईश्वर की छवि धारण किए हुए हैं, तो हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर वे खुद चिंतन कर सकें।
वो क्या है?
हमने आज सुना कि पाप सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि वह हमारे दरवाजे पर घात लगाए बैठे एक हिंसक जानवर की तरह है जो हमें नियंत्रित करना चाहता है। और हमारा असली शाही सम्मान उस निस्वार्थ प्रेम को प्रतिबिंबित करने में है जिससे हम बने हैं। तो सवाल यह है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कार्यस्थलों पर ऐसे कौन से दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं जो उस जानवर को आज भी हमारे रिश्ते को बिगाड़ने का मौका दे रहे हैं? इस पर विचार करें। अगली बार तक के लिए विदा।